अध्याय 17। इसे इस वर्ष भी रहने दो। ये अध्याय लूका 13 आयत 1 से 9 पर आधारित है, जो उनके उपदेश में निर्णय की चेतावनी के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य का पुत्र नहीं आया है, उन्होंने कहा, पुरुषों के जीवन को नष्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए। लूका 9 आयत 56। ईश्वर ने दुनिया की निंदा करने के लिए अपने बेटे को दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन उसके माध्यम से दुनिया को बचाया जा सकता है। यूहन्ना 3 आयत 17। ईश्वर के न्याय और निर्णय के संबंध में दया का उनका मिशन बंजर अंजीर के पेड़ के दृष्टांत में चित्रित किया गया है। मसीह परमेश्वर के राज्य के लोगों को आगाह कर रहा था और उसने अपनी अज्ञानता और उदासीनता को झिड़क दिया था। आकाश में संकेत जो मौसम की भविष्यवाणी करते थे, वे पढ़ने में तेज थे, लेकिन उस समय के संकेत जो इतनी स्पष्ट रूप से उनके मिशन की ओर इशारा करते थे, लेकिन पुरुष तक तैयार थे। जब पुरुष अब ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वे स्वयं स्वर्ग के पसंदीदा हैं और ये कि दुराचार का संदेश दूसरे के लिए है। श्रोताओं ने यीशु को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उत्साह पैदा किया था। यहूदिया के गवर्नर पोर्टियस पिलातुस के कुछ उपायों ने लोगों के अपराध करने दिया। यरूशलम में एक लोकप्रिय तबाही हुई थी और पिलातुस ने इसे हिंसा से उकसाने का प्रयास किया था। एक अवसर पर उनके सैनिकों ने मंदिर के प्रांगण पर भी आक्रमण कर दिया था और कुछ गैलिलियन तीर्थयात्रियों को उनके बलिदानों को खत्म करने के लिए कटाक्ष किया था। यहूदियों ने विपत्ति को पीड़ित के पाप के कारण निर्णय के रूप में माना और जो लोग हिंसा के इस कार्य को पकड़ते हैं वे गुप्त संतुष्टि के साथ ऐसा करते हैं। उनके विचार में उनके स्वयं के सौभाग्य ने उन्हें बहुत बेहतर साबित किया और इसलिए ये गैलिलियन की तुलना में ईश्वर के अधिक इष्ट थे। उन्हें इन पुरुषों के लिए निंदा के यीशु के शब्दों से सुनने की उम्मीद थी, जिन्हें संदेह था कि वे अपनी अपनी सजा के लिए पर्याप्त रूप से हकदार नहीं हैं। मसीह के शिष्यों ने अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस नहीं किया जब तक कि उन्होंने अपने गुरु की राय नहीं सुनी। उन्होंने उन्हें अन्य पुरुषों के चरित्रों को पहचानने और उनके परीक्षित निर्णय के अनुसार प्रतिशोध को मापने के संदर्भ में इंगित किया था। फिर भी उन्होंने इन लोगों को दूसरों के ऊपर पापी के रूप में निरूपित करने के लिए मसीह की तलाश की। उनके जवाब पर वे आश्चर्यचकित थे। भीड़ की ओर मुड़ते हुए उद्धारकर्ता ने कहा, मान लो कि तुम ये गैलिलियन सभी गैलिलियों से अधिक के पापी थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजों को झेला है। मैं तुमसे कहता हूं, अस्वीकार करो, लेकिन तुम पश्चाताप के अलावा तुम सब इसी रीति से नाश होगे। इन चौंका देने वाली आपदाओं को उनके दिलों को नम करने के लिए और उनके पापों को पश्चाताप करने के तैयार किया गया था। प्रतिशोध का तूफान इकट्ठा हो रहा था, जो जल्द ही उन सभी को तोड़ने के लिए था जिन्होंने मसीह में शरण नहीं ली थी, जैसा कि यीशु ने चेलों और भीड़ के साथ बात की थी। वो भविष्यवाणी की दृष्टि से तत्पर था और यरूशलेम की सेनाओं के साथ घेरे हुए था। उन्होंने चुने हुए शहर के खिलाफ एलियस की धमधमाहट की आवाज को सुना और हजारों की संख्या में घेराबंदी बर्बाद हो गई। यहूदियों में से कई उन गैलिलियों की तरह मंदिर की अदालतों में बलि देने के बहुत कृत्य में मारे गए थे। व्यक्तियों पर जो विपत्तियां पड़ी थीं, वे ईश्वर से एक राष्ट्र के लिए समान रूप से दोषी थीं। यीशु ने कहा, पश्चाताप को छोड़कर सभी नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए परिवीक्षा का दिन उनके लिए सुस्त रहा। अभी भी उनके पास उन चीजों को जानने का समय था जो उनकी शांति के लिए थी। एक निश्चित आदमी ने जारी रखा, एक अंजीर का पेड़ लगाया गया था, उसने कहा, जिसमें दाख की बारी है, और वो आया और फल की तलाश की और उसे कोई फल नहीं मिला, इसे काट दिया जाए, और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। मसीह के सुनने वालों ने उनके शब्दों के आवेदन को गलत नहीं समझा। दाऊद ने इज़राइल के विषय में गाया जो मिस्र से बेल लाया था। यशायाह ने लिखा था, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घर है और यहूदा के लोग उसका सुहावना पौधा है। यशायाह 5:7। जिस पीढ़ी के उद्धारकर्ता ने ईश्वर की दाख की बारी में अंजीर के पेड़ का प्रतिनिधित्व किया था, उसकी विशेष देखभाल और आशीर्वाद के घेरे में है। अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य और उनके सामने की शानदार अभिरुचि सुंदर शब्दों में सामने रखी गई थी कि उन्हें धार्मिकता के वृक्ष प्रभु का रोपण कहा जाए कि उनकी महिमा हो। यशाया 6:13। प्रेरणा की आत्मा के तहत याकूब ने अपने अच्छे बेटे के बारे में कहा था, यूसुफ एक फलदार डाली है, यहां तक कि एक कुएं से भी फलदार है जिसकी शाखाएं दीवार पर चलती है, और उसमें कहा, तेरा पिता का प्रभु आपकी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान आपको ऊपर स्वर्ग के आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देगा। वह गहरी उस आशीर्वाद का आशीर्वाद देता है। उत्पत्ति 49:22-25। इसलिए ईश्वर ने इज़राइल को जीवन के कुओं द्वारा एक अच्छी बेल के रूप में लगाया था। उसने अपनी दाख की बारी बहुत ही फलदार पहाड़ी में बनाई थी। उसने इसे निकाल दिया और उसके पत्थरों को इकट्ठा किया और इसे उत्तम बेल के साथ लगाया। यशाया 5:1-2। और उन्होंने देखा कि ये अंगर के आगे लाना चाहिए। यशाया 5:2। मसीह के दिन लोगों ने पहले के युगों की तुलना में पवित्रता का एक बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन वे ईश्वर की आत्मा के मीठे अनुग्रहों से और भी अधिक निराश थे। चरित्र के अनमोल फल जिसने यूसुफ के जीवन को इतना सुगंधित और सुंदर बना दिया, यहूदी राष्ट्र में प्रकट नहीं हुए। अपने बेटे में ईश्वर फल चाह रहे और उन्हें कोई नहीं मिला। इज़राइल सभी में एक सहकर्मी था। इसका अस्तित्व ही एक अभिशाप था, क्योंकि उसने दाख की बारी में वह स्थान भर दिया जो एक फलदार वृक्ष भर सकता है। उसने इन आशीषों की दुनिया को लूट लिया जिन्हें भगवान ने देने के लिए बनाया था। इज़राइलों ने राष्ट्रों में परमेश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। वे केवल बेकार नहीं थे, लेकिन एक निश्चित बाधा थी। बहुत हद तक उनका धर्म भ्रामक था और उद्धार के बजाय बर्बाद हो गए। दृष्टांत में दाख की बारी के सजाने वाला उस वाक्य सवाल नहीं करता है कि पेड़ यदि वह फलहीन रहा तो उसे काट दिया जाना चाहिए, लेकिन वह जानता है और उस बंजर पेड़ में मालिक की रुचि को साझा करता है। इसके विकास और फल को देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह मालिक की इच्छा का जवाब देते हुए कहता है, इस साल इसे अकेले रिलेशनल दो, जब तक इसकी खुदाई और गोबर नहीं डालूंगा तब तक यह अच्छा फल नहीं लाएगा। माली एक संयंत्र को इतना अप्रकाशित करने के लिए मंत्री को मना नहीं करता है। वह अभी भी अधिक से अधिक देखभाल करने की तैयार खड़ा है। वह अपने आसपास के वातावरण को सबसे अधिक अनुकूल बना देगा और इस पर ध्यान आकर्षित करेगा। बेल के पेड़ में मालिक और उसको सजाने वाला उसके हित में एक है। इसलिए पिता और पुत्र का प्यार उनके चुने हुए लोगों के साथ था। मसीह अपने सुनने वालों से कह रहा था कि बढ़े हुए अवसर उन्हें दिए जाएंगे। प्रत्येक साधन का अर्थ यह है कि ईश्वर का प्रेम जिस तरह से विकसित हो सकता है, वह इस बात पर आधारित होगा कि वे धार्मिकता के वृक्ष बन सकते हैं जो दुनिया के आशीर्वाद के लिए फल ला सकते हैं। माली के काम का नतीजा यीशु ने दृष्टांत में नहीं बताया। इस बिंदु पर उनकी कहानी को काट दिया गया था। इसका निष्कर्ष पीढ़ी के साथ आराम आया, जिसने उनके शब्दों को उनके लिए गंभीर चेतावनी दी गई थी, यदि नहीं तो उसके बाद आप इसे काट देंगे। उन पर यह निर्भर करता था कि क्या अपरिवर्तनीय शब्दों को जोर से बोला जाए। क्रोध का दिन निकट था। पहले से ही इज़राइल को नुकसान पहुंचाने वाली आपदाओं में वे दाख की बारी का मालिक दया से उन्हें बेवजह पेड़ के विनाश के लिए मना कर रहा था। चेतावनी हमें इस पीढ़ी में रेखा के साथ लगाती है। क्या तुम्हारा दिल लापरवाह और पेड़ निष्फल है? कुछ समय के बाद कयामत के शब्दों को कहा जाएगा, आपको उनके उपहार कब तक मिले? वह कब से देख रहा है और प्यार की वापसी के लिए इंतजार कर रहा है? माली की निगरानी के तहत अपने अंगूर के बाग में लगाए क्या विशेषाधिकार है तुम्हारा? कितनी बार कोमल सुसमाचार संदेश ने आपके दिल को रोमांचित किया है? आपने मसीह का नाम लिया, आप बाहरी तौर पर संबंध रखते हैं, उसके जीवन का ज्वार तुम्हारे भीतर से नहीं बहता है। उनके चरित्र की मीठे अनुग्रह आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं देखे जाते हैं।
बंजर पेड़ बारिश और धूप और माली की देखभाल प्राप्त करता है। यह मिट्टी के पोषण खींचता है, लेकिन इसकी अनुत्पादक डालियां केवल जमीन को काला करती हैं, जिससे फल देने वाले पौधे इसकी छाया में चार चांद नहीं लगा सकते। तो ईश्वर का उपहार आप पर आया, दुनिया का आशीर्वाद नहीं। आप दूसरों के विशेषाधिकार लूट रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनका हो सकता है। आप महसूस करते हैं, हालांकि यह मंद हो सकता है, कि आप जमीन के कर्मी हैं। अभी तक उसकी महान दया में भगवान ने तुम्हें नहीं अलग किया। वह तुम्हें रूखाई से नहीं देखता। वह उदासीनता के साथ दूर नहीं जाता है या विनाश पर छोड़ देता है। आपको देखकर वह रोता है, क्योंकि वह कई शताब्दियों पहले इज़राइल के विषय में रोया था। मैं तुम्हें पाऊंगा ऐ प्रेम, मैं अपने गुस्से की उग्रता पर अमल नहीं करूंगा। मैं प्रेम को नष्ट करने के लिए वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूं और मनुष्य नहीं। होशे 11:8-9। दयालु उद्धारकर्ता आपके बारे में कह रहा है, इस साल इसे छोड़ दो, जब तक मैं इसके बारे में खुदाई नहीं करूंगा और इसे तैयार करूंगा। जोड़े गए परिवीक्षा की अवधि के दौरान इज़राइल के लिए मसीह के प्रेम के बारे में क्या अटूट प्रेम था। क्रूस पर उसने प्रार्थना की, पिता उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। लूका 23:34। उसके स्वर्गरोहण के बाद यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार किया गया। वह पवित्र आत्मा उड़ेलने दिया गया था। वह पहले सुसमाचार के जीवित उद्धारकर्ता की शक्ति को प्रकट किया। उसका चेहरा जैसा कि उसका चेहरा एक स्वर्गदूत का चेहरा था। प्रेरितों के काम 6:15। उसकी गवाही से दब गया। उसने अपना जीवन लगा दिया। वह सब स्वर्ग ही दे सकता था। मेरे दाख की बारी के लिए और क्या किया जा सकता था। मसीह ने कहा कि मैंने इसमें नहीं किया है। यशाया 5:4। इसलिए उनकी देखभाल आपके लिए श्रम कम नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। फिर भी वह कहता है, मैं यहोवा उसका रखवाला हूं, मैं उसे हर पल पानी दूंगा। ऐसा न हो कि उसमें कोई चोट लगी हो, मैं रात दिन रखूंगा। यशाया 27:3। यदि वह फल अच्छी लाता है, तरह से आता है, और यदि नहीं, तो उसके बाद ईश्वरीय संस्थाओं को जवाब देने वाला हृदय तब कठोर हो जाता है, जब तक कि वे पवित्र आत्मा के प्रभाव के प्रति अति संवेदनशील न हो। फिर यह है कि इस वचन को बोला गया है, इसे काटो और क्यों जमीन पर गिराते हो। आज वह तुम्हें आमंत्रित करता है, हे इज़राइल, ईश्वर के पास आओ, वे ईश्वर है। मैं उनको चंगा करूंगा जो ईश्वर से दूर चले गए हैं। मैं उन्हें स्वतंत्र रूप में विकसित होगा और अपनी जड़ों को लेबनान के रूप में आगे बढ़ाएगा। क्रिकरेवे जो उसकी छाया के नीचे रहते हैं लौट आएंगे। वे मकई के रूप में पुंजीवित हो गए और बेल के रूप में विकसित हो गए। क्रिकरिक्रिमेरे से तेरा फल मिला है। होशे 14:1-8।